نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے ہمارا آج نیا باب شروع ہو رہا ہے اور باب ہے کتاب الحیض حیض کا بیان کتاب کا پیج ہے 188 تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں حیض کے بارے میں کیا بات ہے حیض کے لفظ کو اگر تھوڑا سا سمجھ لیں حاضہ یہوزو سے ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بہنا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یسالونک عن المحیض وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں تو وہی اس محیض کی صورت میں وہاں آیا تھا اور جو تفسیر سن چکے ہیں ساتھی ان کو پتا ہے کہ محیض وہ جگہ جہاں سے خون نکلتا ہے یعنی ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے تو محیض کہہ کے وہاں اور بہت گہرائیاں تھیں وہ ہم اس وقت نہیں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب کے اعتبار سے ہم کچھ مسائل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دی ہے تھوڑی سی بات میں اس بارے میں کرنا چاہوں گی کہ اتنی پرائیویٹ چیز اتنا پرسنل میٹر کہ جس کو انسان گھر کے مردوں سے حتیٰ کہ محرم اور شوہر بیوی بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا پسند نہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں ذکر کر دیا کیا یہ درست ہے اس کی کیا وجہ ہے تو پہلی بات دیکھیے کہ اسے مجھے اور آپ سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اہمیت دی ہے دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کی پہلی آیت میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ہدایت سے مراد ہے گائیڈ بک یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنی انیوژل چیز ہو اور قرآن اور سنت اس کے بارے میں کچھ نہ بولے میرا اور آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے ایسی باتوں میں ہمارے کلچر میں اس میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک طرف تو بہت ہی کھل کے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کہنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے ایڈورٹائزمنٹ بھی کھلے عام دکھتے ہیں اور بل بورڈ پہ بھی یہ چیزوں کے ایڈورٹائزمنٹ لگتے دکھتے ہیں اور بعض دفعہ بہنوں کو دیکھا گیا بھائیوں کو صاف کہتی ہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنی تم جاؤ ایک وہ وقت تھا کہ انسان صرف اس سوچ سے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا کہ گھر کے مردوں کو پتہ نہ چلے تو یہ بھی ایک انتہا ہے اور دوسری انتہا کہ ماں بھی بیٹی کو نہیں بتاتی کہ اس میں کیا مسائل آئیں گے اور صرف شرم کی وجہ سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ حلال اور حرام کا فرق نہیں کر پاتے تو اسلام کا مزاج کیا کہ ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے اچھے لفظوں میں کیا جائے جس کو بات سمجھ آنی ہے اس کو آ جائے گی کوئی غیر ضروری اس طرح کے الفاظ نہ بولے جائیں کہ جس کے ساتھ نئے لوگوں کو یا جن سے کوئی ریلیونٹ چیز نہیں ان کو سمجھ آ جائے لیکن دکھ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ آج ویسٹ نے سیکشول ایجوکیشن باڈی ایجوکیشن اور پڑھانے میں چار چار سال کے بچوں کو عورتوں کے پیریڈز پڑھا دیے یعنی یہ میں آپ کو اپنے بات سے نہیں کہہ رہی جو ویسٹ میں مائیں بچوں کو بھیجتی ہیں ڈے کیئر سینٹرز کہہ لیجئے یعنی چھوٹا بچہ جو اس وقت وہاں 4 سے 5 سال کا ہے اس کو باڈی پڑھاتے ہیں باڈی پڑھانے میں پرائیویٹ پارٹس پڑھاتے ہیں پھر لڑکیوں کا پورا سسٹم پڑھاتے ہیں پھر لڑکوں کا اور پھر شوہر بیوی کا یعنی 7-8 سال کی عمر میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ ریسنٹلی میں جس ٹرپ میں تھی میں ناروے میں تو ہماری ساتھی ہیں تو وہ خود بھی وہیں کی بون اینڈ ریسڈ ہیں اور بہت ہی پریشان تھی ان کا 4 سال کا 4.5 سال کا شاید بیٹا ہے ابھی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس کو بارنے ہاگن بولتے ہیں اس کو ڈے کیئر کو وہاں تو وہاں بھیجا ہے تو میں استاذ اس بات پہ پریشان ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو وہ چیزیں جو ہمیں 7th گریڈ میں پڑھائی گئی تھی یہ سب پڑھاتے ہیں سیکس ایجوکیشن آپ کو پتا ہے عام ہے وہاں لیکن وہ میرے بچے کو اب ڈے کیئر میں پڑھا دی ہے تو میں نے کہا اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیا کہتی نہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پریپئر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے ان کو ابیوز کرے تو ان کو بتاؤ اور وہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ ماں سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ امی یہ ٹھیک ہے جو ٹیچر نے بتایا یعنی میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ دونوں طرف پھر کیوس کتنا پیدا ہوا ہے تو ہم اس کو بالکل اس طرح دیکھیں گے جتنی بھی باتیں ابھی ہم پڑھیں گے ہم سب سوچیں کہ یہ ہم اس وقت علم کی محفل میں اور یہ ہمارا عبادت کا وقت ہے اور ہم لرننگ کے لیے آئے ہیں اور خاص طور پہ آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی بیویوں کے ساتھ یا آپ کی ازواج کا جو اس معاملے میں عمل تھا وہ دیکھیں گے تو ہمارے دل میں تشکر کے جذبات بھی ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پریکٹیکل دین دیا شروع کرتے ہیں حدیث ہے 203 نمبر باب کیا ہے الامر بنفسائی اس نفس अल अमरु अमर काम क्या करे बिन नुफसाई, बिन नुफसा कहते हैं उस औरत को जो निफास में हो। निफास और हैज का लफ्ज अरबी में बाज़ दफ़ा साइमल्टेनियसली बोला जाता है, यानी उस औरत का हुक्म जिसको हैज आए हो वो क्या करे। इस जब नफिस ना, जबकि वो निफास से हो, औरत पीरियड्स में है और हज के दौरान अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या करे। अब देखिए कि हज के दौर में कितने लोग हैं जब हज के लिए जाते हैं तो इस किस्म के मसाइल पूछते हैं, तो इन मसाइल को अगर वक्त से पहले जानना हो तो फिर उस वक्त सवाल नहीं उठते जबकि ये मौका आता है। हदीस है हजरत आयशा से, अन आयशा तो रजी अल्लाह अन्हा कालत, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, खरज ना ला नरा इल्लल हज्जा, हम सब मदीना मुनव्वरा से सिर्फ हज के इरादे से निकले, यानी और कोई इरादा नहीं था हमारा मदीना से निकलने का सिवाय हज के। फलम्मा कुंतु बिसरफिन, बस जब थे हम सर्फ के मुकाम पर, सीन राफा सर्फ एक मुकाम है मदीना मुनव्वरा के करीब है, तो कहते हैं हितु मुझे हैज आ गया। अब आप देखिए उर्दू में आप लफ्ज कहते हैं मुझे हैज आ गया, अरबी जबान में सिर्फ एक लफ्ज बोलेंगे हा द्वाद और ता, हितु मैं हैज से हो गई। अगर आप ज्वाद को द्वाद को ज्वाद कहते तो हिस्तु यानी मैं हैज से हो गई, या अरबी जुबान की वुसअत दिखती है। फदखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, वाना अबकी और मैं रो रही थी, यानी जहर के एक औरत होने के नाते औरत चाहती है कि मैं पूरी इबादत करूं, तो ये कहती हैं कि मैं जब सर्फ के मुकाम पे पहुंची, और आप लोगों के जहनों में है कि नहीं नबी सल्लम का हज जो था वो सन 10 हिजरी में आपने हज किया था, तो हज़रत आयशा इतने साल के बाद जा रही थी और पहली दफ़ा जा रहे थे, हमारे वाला हिसाब नहीं, एक साल नहीं गए तो दूसरे साल चले, तो ये उस नीयत से गई, लेकिन वहाँ जाने से पहले इनको हैज आ गया तो दुख की वजह से रो पड़ी, तो अल्लाह के नबी ने कहा काल फरमाए माला की क्या है तुझको, यानी क्या हुआ तेरे साथ, अनफिस थी क्या तुझे हैज आ गया। कुल तो मैंने कहा नाम यस हाँ। काला फरमाया इन हाज अमरु कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम, ये तो वो काम है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दिया, यानी आपने उनको तसल्ली दी कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर औरत के साथ लिखा गया। फ़क़दी मा यक़दिल हाज, बस तू वही कर जो कि हाजी करते हैं, गैर अल्लाह ततूफी बिल बैती, सिवाय इसके कि तू बैतुल्लाह का हज करे, यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, बैतुल्लाह के तवाफ़ के सिवा तू हर चीज़ कर ले। कालत तो कहती हैं हज़रत आयशा फरमाती हैं ऐसे ही किया। वदहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निसाई बिल बकरी, रसूलुल्लाह ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी दी। अब ये देखिए एक हदीस है, अब इसमें से हम थोड़ी सी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहली बात तो देखिए कि साफ मसला समझ आ गया कि जब एक औरत को पीरियड्स आ जाते हैं, हैज आ जाता है, तो बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा दीगर मनास के हज अदा कर सकती है, ठीक है। अब ये उस वक्त का सवाल है जबकि सफ़ा मरवा की सही बाहर थी। अब इस वक्त सही करने के लिए सफ़ा मरवा के लिए हमें बैतुल्लाह की चार दीवारी के अंदर जाना पड़ता है, तो लिहाजा आज के दौर में उलमा का इसके ऊपर इज्तिहाद क्या है कि चूँकि तवाफ नहीं करेगी अंदर जाना जाने की वजह से, तो मस्जिद में नहीं औरत जा सकती, तो लिहाजा फिर वो सही भी नहीं करेगी। तो इसमें हमें क्या बात पता चली कि एक औरत जो है वो अगर हज के लिए निकली तो उसको पीरियड्स आ गया। पहली बात तो ये देखिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जब औरतें जाती हैं तो वो ये सवाल पूछती हैं कि क्या हम कोई टैबलेट्स ले लें, क्या हमें कोई इस तरह की प्रिकॉशंस है। देखिए गुनाह नहीं है इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह तहारत के मसाइल एक बुक है जो तफहीम सुन्ना सीरीज़ की, उसमें कदर तफसील से मसाइल लखस किए गए हैं, लेकिन सबका खुलासा ये है कि अगर आपको डॉक्टर इजाज़त देती हैं, आपकी हेल्थ को कोई इतना अनयूजल नुकसान नहीं होता कि बाद में फिर आकर आप 3-4 महीने तक प्रॉब्लम में आ जाएं, या हार्मोन्स पे फिर आपको डाल दिया जाए, या एक मंथ को आप रोकें पीरियड्स के तो बाद में उससे पेचीदगी आ जाए, तो गुनाह नहीं है, कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन हर एक अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। मेरा तो इस बात पर ईमान है अल्लाह के हुक्म से कि जो अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया वो ठीक ही होगा। बाज़ दफ़ा बिल्कुल वही डेट होती है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे थोड़े दिन के लिए मैं जा रही हूँ, मुझे महरूम ना करना, खुद बहुत अल्लाह ताला सेटिंग करवा देते हैं आपकी। और अगर हो गया तो फिर क्या, मैं जाऊँगी यहाँ से मक्का। मिसाल है मैं हज के लिए नहीं उम्रे के लिए जाता है एक इंसान, एक हफ्ते का पैकेज है, वल्ला ही अगर अल्लाह का हुक्म समझते हुए बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए बगैर भी मैं आ गई तो मैं उस पर खुश हूँ, क्योंकि रदी तो बिल्ला ही रब, ये मेरे रब का फैसला था, मैं इस पे खुश हूँ। और फिर हस भी अल्लाह, अल्लाह काफी है। तो जिस तरह कोई करना चाहे उसका अपना अल्लाह ताला के साथ तवक्कुल है, कर सकता है। हजरत आयशा ने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए हुए थे, ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए कि हजरत आयशा का रोना, चाहे बीवी नबी की क्यों ना हो लेकिन वो औरत होती है, उसके अंदर जज्बात है। फिर तीसरी चीज इसमें देखिए कि अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों में दिलचस्पी लेना। आपने उनसे पूछा क्या हुआ है? आज के दौर में बाज़ दफ़ा ये देखा गया कि मर्द अपने हाल में मगन, बीवी अपने हाल में मगन, उनके अपने गम, उनकी अपनी खुशियाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। शोहर बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि हजरत आयशा ने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन रोई, तो अल्लाह के नबी खुद समझ गए कि क्या तुम्हें हैज आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ। इससे भी एक बहुत क्लोज एसोसिएशन का फीलिंग आती है। फिर उसके बाद देखिए कि आपका ये तसल्ली देना कि ये तो अल्लाह ने आदम की बेटियों पे लिख दिया है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है। किसी को भी तसल्ली मिल जाती है इससे कि देखो भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद अगली बात ये पता चलती है कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी दी। क्या इसका हैज के इस मसले से ताल्लुक है? नहीं, ये एक अलग मसला है कि कुर्बानी देनी होती है, तो वहां पे यानी जो हज का एक हिस्सा होता है ये उसकी तरफ इशारा है, इसलिए यहाँ इससे कोई मामला नहीं पड़ता। अगली हदीस देखते हैं। हदीस नंबर 204 है, गसलुल हाइजी रास ज़ौजिहा व तरजीलिही, हाइजा औरत का अपने शौहर के सर को धोना और कंघी करना। सुभान अल्लाह। पहले तो लफ्ज़ हाइजा को छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंपल ही लेके देखें आप में से कितनी बीवियां जो अपने शौहरों के सर धोती हैं अगर लटका के सिंक में, या आप उनकी कंघी करती हैं। हैं ऐसे ताल्लुकात आज हमारे? पता नहीं हमने कहाँ से सीख लिए ये ताल्लुकात। इतना नेचुरल ताल्लुक होता था, नबी सल्लम अपने मस्जिद में होते थे एतिकाफ की हालत में, आप अपना सर मुबारक हुजरे में डालते क्योंकि हुजरा बिल्कुल साथ था, तो हजरत आयशा उधर से पानी बहा के धोती थी। ठीक है, उस वक्त ये कोई प्राइवेट बाथरूम या इस तरह के शावर्स नहीं थे कि उसमें पूरे अहतमाम से धोया जाए। जैसे कभी आपने अपने बच्चों के सर धोए होंगे या उनके बालों में कंघी की होगी, तो यहाँ से अल्लाह के नबी का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक देखिए कितना खूबसूरत था। फिर दूसरी बात है कि अब अगली बात देखते हैं कि एक औरत तो पीरियड से है, तो क्या वो अपने शौहर के सर को कंघी करेगी तो वो पाक रहेंगे, और क्या फिर वो उनके सर को धो सकती है? हदीस देखते हैं। आयशा से रिवायत है, वनह रदी अल्लाह अनहा कालत, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, कुंतु थी मैं, अरजिलु। आप देखिए कि एक लफ्ज क्या होता है, रिजल, एक होता है रजल। यहाँ हमने पढ़ा तरजील ही, जरा सबका इकट्ठा करें पहले इस हदीस को पढ़ के। हजरत आयशा से ही रिवायत है, क्या फरमाती है, कुंतु थी मैं अरजिलु रास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरजिलु कहते हैं कंघी करने को, कंघी करने। अब रिजाल कहते हैं मर्द को, रिजिल कहते हैं पाओं को, और यहाँ लफ्ज है अरजिलु कंघी करना, एक लफ्ज के और सबके अंदर रूट एक ही है। कहती हैं कि मैं कंघी करती थी अल्लाह के नबी सल्लम के सर में, वह अनाहा इदुन, जबकि मैं हैज से होती थी। तो क्या पता चला, पहली बात है कि हैज औरत के हाथ नापाक नहीं है। फिर दूसरी बात है कि घर के कामकाज भी औरत कर सकती है और खावन की खिदमात भी सर अंजाम दे सकती है। या सलून अकम अनिल महीज की तफसीर में आपको बताया गया था कि यहूद ने बहुत ज्यादा सख्ती की हुई थी कि हैज के दिनों में औरतों से बात भी नहीं करते थे, उनको अलग डाल देते और बिल्कुल एक थर्ड क्लास किस्म का बिहेवियर शो करते। लेकिन नसारा ने बिल्कुल ही दूसरी हद शुरू कर दी कि उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, और उन्होंने ममनू ताल्लुक भी कायम करना शुरू कर दिया हुआ था। जबकि इस्लाम क्या है कि औरत सिर्फ एक खास ताल्लुक से, चंद चीजें वो एंड पे मैं दोहरा दूंगी इंशाल्लाह ताला, भी हदीस से हम सारी पढ़ ले कि हैज में क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप लोग अपनी भी लिस्ट बना सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए आप दो कॉलम बना लें, डूज एंड डोंट्स, हैज के दिनों में औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पहली हदीस में आप देखिए कि क्या नहीं कर सकती, तवाफ नहीं कर सकती, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि आज के दौर में सही भी नहीं कर सकती, ठीक है। फिर इस हदीस से हमने क्या देखा कि औरत अपने शौहर के बालों में कंघी कर सकती है और उसको धो सकती है। इसी लिस्ट में और चीजें ऐड कीजिएगा, आगे जाके फिर देखेंगे। अगली रिवायत है वफी रिवायतिन, और एक दूसरी रिवायत में है, वहुवा मुजाविरुम फिल मस्जिदी, और वो होते थे बैठे हुए मस्जिद में। ये जो मुजाविर का लफ्ज है ये उर्दू में कितना आम है, किसी कब्र के मुजाविर, तो इसका रूट क्या है, जौर से, जवेरिया लफ्ज भी इसी से है, जारा या जीरू, जौर। हमसाए को कहते हैं कि मुजाविर मैंने कि कहीं जाके बैठ जाना, कि ये अमल कब होता था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे होते थे, युदनी लहा रासहु, करीब कर देते थे उनके अपने सर को, यदि अपनी जगह पे बैठे बैठे सर मुबारक को थोड़ा सा हजरत आयशा के करीब करते थे, वही अफी हुजरती हा, जबकि वो अपने हुजरे में होती थी, फतुरत जिलू हूँ, फिर वो उनको कंघी करती, वही या हायदुन, जबकि वो हैज से होती थी। तो इस हदीस से इतना पता चला कि इवन मर्द मस्जिद में है और औरत उधर है। और अगर आप सोचें कि इतिकाफ में अल्लाह के नबी, औरत तो ज़ाहिर है कि इतिकाफ नहीं कर सकती और इसी तरह से रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन अपने शौहर के बालों को टच कर सकती है, ये मुराद है इससे। ठीक है, फिर अगला बाब देखते हैं, किरातुर रजुली फिल हजरी मराती ही, मर्द का अपनी हायजा बीवी की गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ना, वही हायदुन। यानी टॉपिक क्या है, किरात रजुली, मर्द का कुरान पढ़ना, फी हजरी गोद में, इमराती ही अपनी बीवी की, वही जबकि वो हायदुन हायजा हो। यानी औरत कुरान पढ़े ना पढ़े एक अलग इशू है, लेकिन मर्द अगर कुरान पढ़ना चाहता है तो बीवी की गोद में यानी तकिया लगाकर, जैसे कभी एक बैठा होता है तो दूसरा उसको टेक लगा लेता है। यहाँ से आप देखिए कि हलाल ताल्लुकात में अल्लाह ताला ने कितनी वुसअत रखी है ना। हमारे यहाँ पता नहीं एक अजीब सा तसव्वुर है, एक तरफ तो बेहयाई इतनी है, हीरो हीरोइन तो लिपटे नाचे कूदें भागें सड़कों पर घर सब कहते हैं जी ओके, ये तो उनको करना ही चाहिए क्योंकि हीरो जो है हीरोइन है फिल्म जो बन रही है। और एक तरफ अगर शौहर बीवी को एक प्लेट में खाना खाते देख ले तो लोग खी खी हंसने लग जाते हैं। ये हमारे अपने अंदर की बातें। देखिए इस तरह के जायज़ ताल्लुक को अहमियत नहीं देनी चाहिए, यानी इसको बहुत नज़रों में न रखें। मिसाल है कि आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं ना, बच्चे को प्यार करना एक मारूफ मामला है हमारे सामने। इसी तरह आप देखिए कि दो औरतें बैठ के आपस में बातें करती हैं, कोई बुरा नहीं लगता, बाप बेटी बैठे में तो किसी को बुरा नहीं लगता ना। अल्लाह ने हर ताल्लुक की एक हद रखी हुई है, तो लिहाजा आप किसी को ये ना कहें कि वो क्या कर रहा है, आप इन चीज़ों की अहमियत ना दें। इसी से एक छोटी सी बात और भी आपको बता दूं कि जैसे घर के बच्चे हैं, लड़के हैं मर्द हैं, बच्चे अब कल बड़े होंगे, उनको किस हद तक पीरियड्स लड़कियों के बताए जा सकते हैं? सिंपल, टेक इट इजी। जैसे अब आप कुरान पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, 7-8 साल का वो बच्चा है, 9 साल का हो गया, चले पढ़ते पढ़ते सूरह बकरा में जब वहां पहुंचेगा 10 साल का हो गया, अब आप परेशान हैं। माई कहती हैं ऐसी स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो कहती हैं बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, अब ये यसलूना का निल महीज क्या आयतें आ गई हैं, बेटे को क्या बताएं? भाई सिंपल बताइए, बेटा ये बीमारी है, बाथरूम में जाते हैं ना, वॉशरूम में टॉयलेट यूज करते हैं, यूरिन पास करते हैं और स्टोल पास करते हैं, दैट इज थिंग। यानी इसको ग्लैमराइज ना करें, हमारे कल्चर में इन चीज़ों को ग्लैमराइज कर दिया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा करके नहीं, सिंपल रखिए कि हाँ भाई ये एक बच्चियों की बीमारी होती है, दैट्स इट। जब हम इसको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस कर देते हैं ना, तो फिर और क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो लिहाजा लड़कों को जहाँ ज़रूरत है उस वक्त तरीके से बता दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको यानी ना तो छुपाया जाए और ना बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ते हैं हज़रत आयशा क्या फरमाती हैं। वन हरदी अल्लाह वनहा कालत, और उन्हीं से रिवायत है कि वो फरमाती हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यत तकियू, तकिया लगाते, फी हजरी मेरी गोद में, व अना और मैं, हायदुन हैज से होती थी, सुम्मा फिर यक़रा अल-क़ुरआन, फिर वो कुरान पढ़ा करते थे। ठीक है, तो हायजा औरत और जुम्बी मर्द कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, अलबत्ता उनकी गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ना ये और चीज़ है, तो ये दुरुस्त है। और यहाँ से आप देखें अल्लाह के नबी अपने घर में कितने रिलैक्स्ड मूड में होते थे, यानी इससे ताल्लुकात की गुर्बत भी दिखती है, और घर भी छोटे से थे, एक कोई काम कर रहा है तो दूसरा उसे ज़रूर मुतासर होता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला आ जा जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।